अगली सूरत सूरत तौबा है, जो यूनिक सूरा
इसके और सूरत तौबा के बीच में बिस्मिल्लाह नहीं है।
आज तक देखी किसी मुसहफ में नहीं। इससे भी कोई खूबसूरत इत्तबाए रसूल होगी। अकल में आए ना आए, वजह समझ आए ना आए, इसकी हिकमतें मालूम हो ना हो, लेकिन ये सब कुछ फिर भी अल्लाह ताला ने कह दिया। इससे पता चलता है कि कुरान में एक जबर जेर का फर्क नहीं है। लोग पता नहीं दुआओं में आगे पीछे लगा कर कुरानी दुआओं को, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व किन अज़ाब अन्नार और न जाने क्या कुछ कहने लग जाते हैं। तो बहरहाल सूरत तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं है, नहीं होगी, क्यों नहीं है, मजमून भी है क्या। और हजरत अली कहते हैं कि ये सूरत अपने हाथ में तलवार लेकर आई, इसमें बरात है, इसमें वायदे मुआहदे टूट रहे हैं, मोहलत खत्म हो रही है, यानी इसमें जो मक्का के मुशरिकीन थे उनको आखिरी हुज्जतें दी जा रही हैं। सन 9 हिजरी के साथ इसका ताल्लुक है। तो जरा सब एक बिग सिनेरियो में देखिए सूरत के मजामीन। आयत 1-6, सन 9 हिजरी में मुशरिकीन ने अरब के लिए फैसला को नहलाना है कि अब जो होना था हो गया, जिस तरह से जो भी है वो है। फिर आयत 7-24, सन 8 हिजरी में मक्का पर हमले के लिए मुसलमानों की जहन साजी की जा रही है। और 25-37, सन 9 हिजरी में मुशरिकीन ने अरब और अहले किताब के लिए रुस्वा को नहकाम आता है। और 38-129, गजवे तबूक के हालात तो वाकयात पर भरपूर तबसरा और मुनाफिकीन के लिए रुस्वा को नहकाम आता है। ये था पूरी सूरत का ओवरव्यू। अब चलते हैं जरा सा क्लोज सर्कट जायजा लेते हुए आयतों के मजामीन के एतबार से। तो पहली 6 आयतें मुशरिकीन ने अरब के लिए फैसला कुन ऐलान, बहुत साल हो गए थे इनको मोहलत देते हुए, 13 साल मक्का के और 9 साल मदीना के गुजर चुके हैं। अभी तक अल्लाह का घर मुशरिकों के लिए खुला हुआ है, बुत भी रखे हुए हैं और सब कुछ है। वो तो टूट गए सन 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ। फिर भी सब्र की इंतहा देखिए, अगले साल का हज आया, अब डिसीजंस मेक किए जा रहे हैं। देखिए क्या क्या हिकमतें मिलती हैं तार सीरत पढ़ के, ये आप यहाँ से देखिए। हम सोच नहीं सकते कि किसी जगह आप अल्लाह के दीन की बात करने लगें और फिर उस वक्त जाते ही फैसले ये उतारे, तस्वीर लग गई, ये कर दिया, वो कर दिया, इन कपड़ों में ये नहीं, आपने ये किया, आप नमाज नहीं पढ़ते। परेशान करते हैं। सब्र, सुकून, तहम्मुल के साथ अल्लाह के नबी ने दीन फैलाया, तभी तो इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज आ गया। आज मुशरिकीन, आज गैर मुस्लिम इस बात का सबूत देते हैं, अल्लाह के नबी को ये कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, द मैन हु शोक द अर्थ, वो इंसान जिसने ज़मीन को हिला दिया। और खूबी तो वही है जो दुश्मन आपकी माने, अपने तो हमेशा आपकी तारीफें ही करते रहते हैं। क्या सीखा, अपने अंदर दमखम हो ना तो इंसान वाकई फिर कुछ ना कुछ तो दुनिया में हलचल पैदा करता है। फिर आयत 7-15, हक और बातल में सुलह नहीं हो सकती, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप मीठे और कड़वे को मिलाएं तो एंड पे क्या निकलेगा, गरम और ठंडे को मिलाएं तो एंड पे क्या होगा, जमजम में कीचड़ मिलाएं तो क्या होगा। तो मान लीजिए हक जमजम है, बातिल कीचड़ है। जितना बातिल और बातिल के तरीकों को आप पढ़ते सुनते जाते हैं, समझते जाते हैं, उतना आपको उससे चिड़ होती है। ऊपर तो वनीर है खूबसूरत, आप ये वनीर तो उतार दीजिए इस तहजीब और इस कल्चर से जिसके लिए आज मरे जाते हैं, जिसके लिए नस्लें हमारी वे पीछे भागने को तैयार हैं। उनके अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर खोखला है। पुरानी चीज़ों पे नए कपड़े पहना कर उसको नया कर दिया गया, पुरानी बोतलों में नई शराब डाल दी गई। हक हक है, बातिल बातिल है, लिहाजा ये साथ नहीं चल सकते। यही थी दो कौमी नजरिए की बुनियाद। फिर आयत नंबर 16, जंग खूने जिगर देकर ही मिलेगी। जब तक खून ना जलाया जाए, और जिगर वो जगह है जहाँ जिस्म में, यानी आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन होती है, जिगर का काम बहुत सख्त है, खून साफ होता है इस जगह पे। तो जब तक आप जल के कुड़ के अपना खून जिगर ना दें किसी काम को, वो काम नहीं होता। आपको जिम्मेदारी दी जाए, आप जिम्मेदार बन गए, आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया, आपको कोई ग्रुप दे दिया गया, दिल जलाइए, खून दे दीजिए अपना इस दीन को, मिल जाएगा बहुत कुछ आगे जाकर, दुनिया में इतना मिलेगा संभाल नहीं सकेंगे। फिर आयत 17-22, महदूद मसबी तसव्वुर की जोरदार नफी है। झूठी नेकियां, दिखावे की नेकियां, माँ कान अल मुशरिकी नहीं या मुरु मसाजिद अल्लाह, शिर्क की गवाहियां देने वाले मस्जिदों को आबाद करेंगे, हाजियों को पानी पिला देना और चंद नुमाइशी नेकियां करके क्या ये दीन है, ये महदूद देन है। आज भी यही है, चंद रस्मी नेकियां करो बहुत बच गए, अंदर तकवा नहीं, ईमान नहीं है। इसीलिए फिर आयत 23 में फरमाया गया, क्या हो जरा अपने ईमान की कीमत दो, दोस्ती की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ईमान पर रखो, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. یہ ہے وہ تلوار جو چلانی پڑتی ہے بعض دفعہ خون کے رشتوں پر تاکہ اللہ کا دین بچ جائے. I-24 دنیاوی محبتوں کو دینی محبتوں پر ترجیح دینے والے فاسق ہیں. 8 محبتوں کا ذکر ہے, اسے ایک آیت میں انشاءاللہ ہدایات میں بھی دیکھیں گے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم سے لے کر آیت کے آخر تک. پھر آیت 25 سے 27, 25 سے 27, فیصلہ کن شے اسباب نہیں مدد ہے. کوشش کر لیجئے لیکن مدد اللہ کی آئے گی تو فائدہ ہوگا, کیونکہ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذا جبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اللہ اکبر, کیسے اللہ نے آنکھیں کھول دی کہ مدد میری ہی آئے گی تو بچو گے, تمہاری کثرت بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی. اور پھر آیت نمبر 28, مشرقین کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی. اتنے صبر کے بعد, اتنے انتظار کے بعد اب کہہ دیا انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا, اس سال کے بعد اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا اور اب قیامت تک نہیں آئے گا. آیت 29, اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کیا ہوگی. حتی یوت الجزیت عن یدن وہم صاغرون, جزیہ دے کے رہیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے. آج بھی دیکھ لیجئے منورٹیز کے لیے اسلام کا یہی اصول ہے. حضرت عمر نے بڑے سخت قوانین وضع کیے تھے اس دور میں, اب ڈیلے ڈیلے ہوتے ہاتھے پتہ نہیں کہہ لیجئے کہ ذمیوں اور منورٹیز کے ہاتھ میں پوری پوری مسلم ریاستیں چلی گئیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کی آنکھیں کھول دے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 سے 31, یہود اور نصارہ کا شرک. اپنے دین دینے والوں بتانے والوں کو ہی دین کا مالک سمجھ لیتے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یعنی ان کے صحیح کو صحیح کہنا, ان کے غلط کو غلط کہنا, نہ دلیل کی بات نہ کسی اور چیز کی بات. نتیجہ اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر دین چند لوگوں کی میراث بن جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس پر حاتم بن عدی کو وارن کیا تھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 32, اہل کتاب سازشوں کے ذریعے اسلام کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. سازشی ذہن بزدل ہوتا ہے. مکہ والے کم از کم سامنے آ کے لڑتے تو تھے نا, سینہ کھول کے آتے تھے, لیکن مدینہ والے دشمنوں نے چھپ کے ہی وار کیے. اور ظاہر ہے کہ خود میدانوں میں آ کے لڑنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا, تو پھر اسی طرح کی سازشیں کرتے جو تھی ہیں اور رہیں گی. پھر اسی طرح 33, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کا, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین تھا. 3 دفعہ یہ آیت قرآن پاک میں ہے کہ کیسے دین کو غالب کیا. وہ تو منہ کی پھوکوں سے اسلام کو بجانا چاہ رہے تھے نا. یریدون علی ان یطفئوا نور اللہ بافواہم, اللہ کے نبی کو اللہ نے کس لیے بھیجا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, اللہ کرے کہ اس غلبہ اسلام میں, غلبہ دین میں ہمارا بھی کچھ حصہ ڈل جائے. پھر آئے 34 سے 35, علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کا مال ناحق کھاتی ہے. سب نہیں لیکن اکثریت کھاتی ہے. ظاہری بات ہے کہ جب لوگ ان سے فتوے مانگیں گے, لوگ ان سے کوئی نجات کے نسخے پوچھیں گے, تو کچھ مٹھی تو گرم کرنی پڑتی ہے, کچھ نذرانے تو دینے ہی پڑتے ہیں. تو اس لیے تنقید ہے نصارہ کے مذہبی رہنماؤں پہ بطور خاص, اور پھر باقی جس پہ بھی اپلائی ہو جائے. یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, تو دین دار کے ساتھ جب یہ ٹھپا لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دین قابل قبول ہی نہیں ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی تعلیم کے ساتھ مال کی کوئی نسبت آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, ان دو چیزوں کو الگ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. پھر اسی طرح آئے 36, سال میں 12 مہینے اللہ کے طے کردہ ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرم فی کتاب اللہ, کبھی بچپن میں ہم بھی سوچتے تھے یہ شروع سے ہیں کب ہیں, پہلی دفعہ جنوری کس نے بنایا, پہلی دفعہ رمضان کس نے کہا. تو اللہ نے کہا ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے, ایک لونر کیلنڈر اور ایک سولر. آئے 37, نسی کا قاعدہ حرام ہے. نسی کیا تھی؟ بدعت تھی مکہ والوں کی, اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے. مثلا جیسے آج کے دور میں آپ مثال ہے کہ آج مئی کی 3 तारीख है गालिबन जी, 3 है, तो आप कहते हैं नहीं ये जून की 3 तारीख है, तो जब 3 जून आए तो आप कहते हैं कि अब ये मई की 3 बन गई। आप जो मर्जी कह लीजिए, आप अपनी गिनती में 13 कलर्स निकाल दीजिए कि नहीं ये मनहूस होता है और आप 12 के बाद 14 लिख दे, होता तो वो 13 ही है। तो इस तरह की बिदात करते रहते थे ताकि हज हमेशा अच्छे दिनों में आए और उनकी तिजारत चमकती रहे, क्योंकि हज उनके लिए तिजारती मेला बन चुका था, पूरे साल की मईशत उस पर थी। तो उसी की तरफ इशारा है इधर कि जब दीन के साथ दुनिया का इस तरह का कॉन्सेप्ट मिल जाए और दीन बिगड़ जाए तो अल्लाह ताला को उस पर गुस्सा आता है। फिर आए 38 से 41, अल्लाह की राह में निकलने से जी ना चुराओ, ये तुम्हारी चॉइस नहीं, अल्लाह ने तुम्हें ये नहीं कहा कि देख लो इफ़ यू वॉन्ट इट। या अय्युहल लज़ीना मनुमा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि सअक़लतुम इलल अर्ज़। आपने पीछे भी देखा है सूरत के आपको खुलासे में बताया गया कि अब यहाँ से आगे तबूक का सफ़र और उसके इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें चलती रहेंगी। जब अल्लाह के दीन को ज़रूरत हो और आप घर बैठे रहें तो आप मुजरिम हैं। आज के दौर का बहुत बड़ा क्राइम मुसलमानों का दीन के दिफा के लिए ना निकलना, दीन के की नशर इशात के न लिए ना निकलना, जब जहाँ दीन का कोई तकाजा है और आप बैठे रहें तो यह ऐजाद कर लीजिएगा, फिर अल्लाह बिठा ही देता है ना। और फिर इसी तरह से आप देखिए आयत 42, मुनाफिकाना तर्ज़ अमल है। अल्लाह का नबी तो गारे सौर में भी चला गया इस दीन को बचाते बचाते, और आप में अपनी जान बचाते बचाते घरों में बैठ जाएं और अल्लाह के दीन के लिए फिर भी ना निकलें तो ये ज्यादती की बात है। तो मुनाफिकाना तर्ज़ अमल क्या है? लव का नारदन करीबम व सफ़रन कासिदन लत तबाऊ का, यानी अगर सफ़र करीब का होता, सामान दुनिया का बहुत मिलने की उम्मीद होती, खुशी खुशी आपके पीछे जाते। वला के बाउदत अलैहिम शुक्का, लेकिन इनको बड़ी बोझल लगी दूरी, लंबा सफ़र और आगे से मिलने की उम्मीद भी कुछ नहीं, एक एक खजूर ना मिली रास्ते में। अल्लाह हमें ऐसे मुनाफिकाना तर्ज़ अमल से बचाए। सहाबा के अमल देखिए तो यकीन करें दिल खिल जाता है। फिर इसी तरह से 43 से 48, अल्लाह की राह में जान माल लगाने वाले ही मोमिन हैं, बस बाकी सब अपना जो मर्जी नाम रख लें कोई उनको रोकता नहीं है। इसलिए कहीं जो जाहिदु बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन। असल में पता भी तभी लगता है जब कोई कुर्बानी देता है बंदा, बच्चे से प्यार है ना, कितना लगा चुके आज तक और आगे भी लगाने का इरादा है। गैर के बच्चे को 20 पाउंड दिए हों तो 10 दफ़ा सोचेंगे दे दूं कि रहने ही दूं, बस ये फ़र्क है। अपना बच्चा समझेंगे दीन को, कभी नहीं गिनेंगे, मेरा सब मेरे दीन का, कुछ मुझे ज़रूरत पड़ी मैं भी ले लूँगा, इट्स ओके, एक ही अकाउंट है हमारा। और अगर दूसरी तरफ देख लें तो जान निकल जाए और वो ख्वाब भी पूरा आ गया तो 20 का नोट निकालते हुए तड़पता है बंदा, अच्छा कुछ चेंज हो तो वही डाल दूँ। तो ऐसे लोगों को फिर दीन की खूबसूरतियाँ समझ भी नहीं आती, फिर वो अपने बुखल में ही उलझते रहते हैं। फिर आयत 49 से 50, तकवा के पर्दे में लिपटा हुआ बहाना। अल्लाह अकबर, यानी बज़ाहर तकवा की बातें लेकिन अंदर बहाने बहाने, हर जगह में सबसे ज्यादा बहाने दुनिया में दिखते हैं दीन के नाम पे। बाकी कभी बहाने नहीं हुए, रातों को खड़ा होना पड़े, नाइट्स में जाना पड़े, फ्लाइट्स पे जाएं, शॉपिंग करें, ब्लैक फ्राइडे पे जाके बाहर लोगों के लिए दीवार दरवाजों के बाहर खड़े हो जाएं कि गेट खुलें तो हम अंदर जाएं, सब पॉसिबल है। और जहाँ दीन की बात आई, बड़ा तकवा है, बस औरतों को देख कर मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहता, चले फिर ऐसा करें कि मुझे ना ही साथ ले जाने दें। वमिन हुम्मन यकूलु ज़ल्ली वला तफ्तिन्नी। अल्लाह कहते इसने वहां जाकर क्या फितने में पड़ना है, अला फिल फितनति सकतु, ये तो पढ़ चुके हैं। तो याद रखिए नाम कुछ भी रखिए, दीन से पीछे रहने वाला बहरहाल है महरूम। 51 से 52, हारे भी तो बाजी मात नहीं, कभी कभी नुकसान होने पे अफसोस होता है, शिकस्त पे दिल मैला होता है, और कभी कभी तो शिकस्त बड़ी प्यारी लगती है। क्यों? एक ही लगती है, फतह तो फतह, शिकस्त तो शिकस्त, विन विन। क्यों? इसलिए कि तुम हमें हरा ही नहीं सकते। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून। ये है बात, हमारा क्या बिगड़ता है, यहाँ मिल गया नहीं तो वहाँ मिल जाएगा। हल तरब्बसू न बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन, हमें दो में से खैर तो मिलनी ही है। तो मोमिन के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, या इधर की कामयाबी या उधर की कामयाबी, दोनों में उसको नंबर पूरे मिलते हैं। फिर आयत 53 से 57, मुनाफिकीन का इन्फाक कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब जान की ज़रूरत हो तो कोई माल पेश करे, क्या करना है उस माल को? आपको हेल्प की ज़रूरत है और कोई $10 भेज दे कि आप ऐसा कीजिए $10 ले लें और ये फर्नीचर ज़रा खुद ही मूव कर लें, अच्छा कोई मेड बुला ले $10 में, वो आपके लिए काम करे, तो आपको अच्छे लगेंगे वो $10? आप कहेंगे आप रखिए, मेरे पास इससे भी ज़्यादा हैं। बस जब हम अपनी जान बचाते हैं, वक्त की ज़रूरत है, हमारी स्किल्स की ज़रूरत है, किसी को आपकी ज़रूरत है दीन के लिए, कोई खाना पीने के लिए थोड़ी को बुला रहा है आपको। एक कमिटमेंट पूरी करनी है, एक बात पूरी करनी, वल्ला ही उस वक्त तो आप नफिल भी नहीं पढ़ सकते। ज़रूरत इस बात की है कि हम दीन को इस अंदाज से समझें। सहाबा इस फ़र्क को समझ गए थे, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में कितना बैलेंस रवैया था। अल्लाह ताला ने जंगों के हालात ला कर ये तक बता दिया कि आते नहीं थे, यानी उनका हाल क्या था कि जब कॉल मिली जंग की तो अब खुद तो नहीं आ सके, आना नहीं था, डर था कि मर जाएंगे, और वहाँ से तो कोई उम्मीद ही नहीं बच के आने की, तो फिर चंदा भेज दिया, मौलवी साहब ये रख लीजिए, ये मेरा हिस्सा डाल दीजिए, वैसे मुझे याद रखिएगा, मैं नहीं आ सकती, असल में मैं मजबूर हूँ। अच्छा मैं ड्राइवर को भेज दूंगी। तो याद रखिए, कभी कभी तो मजबूरियाँ होती होंगी, लेकिन जब मजबूरी ना हो तो अल्लाह ताला इसको फिर किस रंग में ले रहा है आप खुद समझ रहे हैं। फिर आयत 58-59, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अदल ना करने का बहतान लगाते थे कि आप तो पता नहीं क्या फेवरेटिज्म का शिकार हैं, जिसको आपका दिल करता है आगे कर दे, जिसको पीछे कर दे, जिसको दे दें, तो उस पर अल्लाह ताला ने आसमान से बेगुनाही साबित कर दी कि आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। वमिन हो मैं यल मिजु का फिस सदक़ात, जरूरत कैसे हुई इनके अल्लाह के नबी के बारे में ऐसी बात सोचने की। और आयत 60, ज़कात के मसारिफ, कहाँ ज़कात दी जा सकती है। आयत 61 से 66, मुनाफिकीन की गुस्ताखियाँ, जो ज़ुबान के तेज़ होने की वजह से मुँह से भी निकलती थी, हरकतों से तो दिखती थी। और 67 से 68, मुनाफिकीन मर्द और औरतें नेकी से रोकते और बुराई फैलाते हैं, अल्लाह अकबर। और 69-70, तारीख से इबरत। और 71 से 72, मोमिन मर्द और ख़वातीन नेकी फैलाते और बुराई से रोकते हैं, यानी मिस्टर एंड मिसिस वहाँ डिफरेंट टेस्ट के हैं, यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट है दोनों का। और 73 से 74, मुनाफिकीन और कुफार के खिलाफ जिहाद का हुक्म, देखिए मुनाफिक को काफिर के बराबर खड़ा कर दिया इस आयत में। 75 से 77, अल्लाह से वादा खिलाफी की सज़ा मुनाफ़िकत में मिलती है, यानी दिल में फिर निफाक भर जाता है, जब ऊपर से आप दिखते हैं अंदर मोहब्बत नहीं, तो अल्लाह ताला फिर अंदर बाहर एक जैसा कर देता है। और उसके बाद फिर 78 से 80, मुनाफिकीन के लिए आपकी दुआ इस्तग़फ़ार कबूल नहीं होगी, यानी जो मर्जी को कर ले निफाक के साथ अल्लाह ताला नबी की दुआ भी नहीं कबूल करता। और 81 से 82, जहन्नम की आग दुनिया की गर्मी से ज़्यादा शदीद है। और 83 से 84, मुनाफिकीन की महरूमियाँ, जो क़्यामत के दिन भी होंगी और दुनिया में भी, जब इस्लाम गालिब आता है तो मुनाफिक महरूम रहेगा और रहता है। 86 से 87, 85 आयत देखिए, मुनाफिकीन के लिए उनका माल और औलाद बाइस अजियत होंगे। अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा सच्चा मोमिन बन गया, आप बताइए मुनाफिक बाप जब बेटे को ईमान के साथ देखकर, ईमान के तकाजे पूरे करता देखे, तो क्या उनको उसको खुशी होगी? तो क्या पता चला कि जिन औलादों को बचाने के लिए ये सारे काम करते रहे, वो औलादे भी बिल आखिर एंड ऑफ द डे इनकी खुशी का सामान नहीं बनी। जब अपने बेटे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काम करता देखते होंगे तो कोई दिल खिलता होगा या खुश होता होगा उनका? नहीं होते। इसी तरह 86-87, मुनाफिकाना तर्ज अमल, कि कैसे इधर उधर डोलते फिरते हैं और एक जगह जम के रहते भी नहीं। और इसके बाद फिर 88 से 89, मोमिनाना तर्ज अमल। और पारे के आखिर में 89 आयत से 96 तक, गज़वे तबूक में शिरकत ना करने वाले चार गिरोह। और 97 से 99, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले दो किरदार। तो क्या पता चला कि हमारे लिए आईना मौजूद है, अब हम खुद को देख लें। चंद आयतों को देख लीजिए जिसमें आपके मेरे लिए गाइडलाइन है, तफसील तो अब हो गई, सिर्फ आपने पॉइंट आउट करके बाद में इस पे गौर करना है। पहली बात, आयत 5, हुक्मे किताल और मुतवाजन तालीम, यानी अल्लाह का दीन किसी पे जुल्म नहीं करने वाला। फ़ैन ताबू व क़ामुस्सलात तवातुज़्ज़कात तफ़ख़ल्लु सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, यानी हुरमत, यानी जो 4 महीने का वक्त दिया था मोहलत का, जब वो गुजर जाएं, इसके बाद फिर अगर इलीगल ये वहाँ रह रहे हैं तो तुम उनको पकड़ने का हक रखते हो, लेकिन अगर फिर भी ये तौबा करें, यानी पूरी सूरत में ये मिजाज है, तौबा कर लो, तौबा करो, तौबा कर ले तो छोड़ दो, तो गैर मुस्लिम भी अगर तौबा कर ले तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा। फिर आयत 19, नेकी का वसी तसव्वुर यानी रस्मी नेकियां छोड़ो, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद करना इस शख्स के अमल जैसा सोच लिया जो अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान रखता है और उस अल्लाह की राह में जिहाद करता है? तो ये तो बराबर नहीं। तो ज़ाहरी नेकियां और सही नेकियां जो अंदर की नेकियां, देखिए एक कहता है मुझे काउंटर पर बिठा दे, मैं आते जाते सबको दिखूँ, मुझे सामने बिठा दीजिए सजा सवार कर, सारे देखें कि वाह कितनी नेक कितनी अच्छी रोज़ काम करती। और एक है वो कहता है कि मुझे दें हज़रा, मैं अंदर से कुछ ज़रा सफाइयाँ तो करके आऊँ। कैसे बराबर हो सकते हैं? दोनों ही नेकी के काम कर रहे हैं, लेकिन पहले की नीयत बिगड़ सकती है, दूसरे के अंदर इखलास है तभी वो कर रहा है। फिर आयत 24, मोहब्बतों में तरजीहात, इन मोहब्बतों के तराजू में अपने आप को रख कर देखिए, आपको मुझे पता चलेगा ईमान है निफाक है या उससे भी गिरी हुई कोई चीज़। पांच रिश्ते और तीन बेजान चीज़ें जिसमें आज का इंसान खोया हुआ दिखता है, इनकी तफसीर सुनिए। आप जाकर किसी भी तफसीर के सेट में इस आयत की तफसीर सुनिए तो पसीना आ जाएगा, बस ये कह सकती हूँ। गम लग जाता है अपना। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाबी मिशन आयत 33, कि आपका काम था दुनिया में गलबा इस्लाम और इसका इजहार, आपको मुझे आज इसी के लिए अपनी जिंदगियां खपानी है इंशाल्लाह। फिर आए 34 से 35, माल में बुखल का इंजाम क्या है, कि वही माल तख्तियां बनाकर स्त्री की तरह जिस्म पर दागा जाएगा, वो माल जिस पे ज़कात ना दी जाए वो कंज है, और ऐसा माल जो नाफरमानी और नाजायज तरीकों से हासिल किया जाए कल क़यामत के दिन वो लोहे की तख्तियां बनाकर पेश किया जाएगा माथों और पेशानियों पे। अल्लाह ताला में ज़कात को अदा करने वाला बनाए। फिर आयत 52, अहले ईमान के लिए हर हाल में कामयाबी है, यानी बच जाएंगे तो गाजी बनेंगे तो अल्लाह ताला की रहमत है फिर भी, और अगर शहीद हो गए तो वहां की दुनिया, यानी इधर ना जिंदा रहे तो उधर जिंदा रह लेंगे। तो ईमान वाला कभी भी नाकाम नहीं, इस सौदे में कभी हार होती नहीं है। फिर आयत 60, ज़कात के मसारिफ हैं, आप इसकी डिटेल सुन सकते हैं, किसको देनी किसको नहीं देनी। हाँ, फरीदतम मिन अल्लाह, औरत अपनी ज़कात देगी मर्द अपनी देगा, अगर मर्द दे देता है तो उसका एहसान है और अगर वो ना दे तो जवाबदेही औरत से होगी। और आयत 67, मुनाफिकीन का तर्ज अमल, और वो क्या है कि बुराइयों को आम करते हैं, उसके तो इश्तियार बांटते फिरते हैं और नेक कामों से रोकते हैं। छोड़ो ना, अब रमज़ान तो ख़त्म हो रहा है, अब क्या करना है, अब चलो आगे चलते हैं, फलां तैयारियां और फलां शादियां और ईद की पार्टियां और ये कुछ। अल्लाह कहते हैं कैसे लोगों को बता दो, नसुल्लाह फ नसीहम, उन्होंने अल्लाह को बुलाया तो अल्लाह ने इनको बुला दिया। और इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून। और आयत 71, अहले ईमान का तर्ज अमल उससे अपोजिट, ये नेकियों का हुक्म देते हैं बुराइयों से रोकते हैं, नमाजें कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बातें खुशी से मानते हैं, यही हैं लोग उलाई का सयरहमुहुमुल्लाह, जिन पर अल्लाह ताला रहम करेगा और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और 75 से 77, वादा खिलाफी की सज़ा निफाक, जब नियत की हो कि मैं ये काम करूँगा और फिर ना करे, ये दूंगा और फिर ना दे, तो अल्लाह ताला फिर तौफीक ही छीन लेता है। ये माल थोड़ा है ज़रा ज़्यादा हो जाए फिर ज़्यादा ही अल्लाह के काम करूँगा, जो थोड़े में नहीं देता वो ज़्यादा में तो बिल्कुल नहीं देगा, जो थोड़े वक्त में से नहीं दे रहा तो ज़्यादा वक्त में तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो दुआ कीजिए कि ये सूरत वाकई अंदर बाहर को खोल के रख देती है, अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमाए। आज की हदीस सही बुखारी की रिवायत है, दो अफराद पर रश करना जायज़ है, एक वो जिसे अल्लाह ने कुरान के इल्म से नवाजा हो और वो दिन रात इसके सीखने सिखाने में मशगूल हो, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ताला माल से नवाज दे और वो दिन रात इसे अल्लाह की राह में खर्च करता हो। आप और मैं अपना जायज़ा ले लेते हैं कि हम किन को खुशकिस्मत समझते हैं, हमारी नज़रें किन पे लगी हुई हैं, हम किन को कामयाब कहते हैं। सवाल जवाब आपके वेलकम, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।